Bien, प्रथम अगस्त 2020 का दिन आप सबके लिए मंगलमय सुखमय हो। आप सब गीता श्रीमद भगवत गीता के जो श्लोक आप सुनते हैं उन पर मनन चिंतन कीजिए। गीता एक ऐसा ग्रंथ है, श्री राम कृष्ण परमहंस कहते कि गीता को 10 बार बोलो, गीता 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 तो क्या बनता है, त्यागी त्यागी त्यागी। गीता को त्यागी त्यागी बोलने से त्याग आ जाता है, जो गीता पढ़ता है उसका जीवन त्याग नहीं होता है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सर्वज्ञानिक है, इसमें ऐसे उपदेश है कि चाहे हिंदू पढ़े चाहे मुसलमान चाहे ईसाई, ये सब जन्य मान्य है। और गीता हमें प्रतिदिन एक विश्वास देती है, आत्मविश्वास, कि अपने पर विश्वास करो। और जब अपने पर विश्वास मनुष्य करता है तो भगवान पर स्वयं अपने आप ही विश्वास होता चला जाता है। आज मैं गीता अध्याय 4 का 13 और 14 श्लोक पढ़ूंगी। चातुर्ब्रह्म मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कथामपि माम विद्या अकर्तव्यम् न माम कर्माणि लिम्पन्ति नानि कर्म फले सुप्रिया इति माम यो अभिजानाति कर्म भेदना सह बध्यते। देखिए भगवान क्या कहते हैं, मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। ये चार वर्ण आप जानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये रचना किसने की है, भगवान ने, कर्मों के अनुसार गुणों के अनुसार। जैसा कि मनुष्य में गुण है, जैसा वो कर्म करता है उसका वैसा ही आश्रम उसको दे दिया जाता है। उस निश्चित रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को अकर्ता जान कुछ करता हूँ, भगवान कहते हैं, लेकिन फिर करते हो मैं कुछ नहीं करता, मुझे अकर्ता जान। तो क्यों, क्योंकि मुझे कर्मों के फल में कोई सप्रिया नहीं है, मुझे कर्मों के फल की इच्छा नहीं है। जब भी मनुष्य कर्म करते हैं तो इच्छा पहले कर लेते हैं कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, इसलिए मुझे कर्म युक्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। ये आज्ञा निष्काम कर्म योग, वो मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से ऊपर उठ जाता है। एवं ज्ञातवा कृतम कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्तम पूर्वे पूर्वतरम कृतम। गीता अध्याय 15 सॉरी गीता अध्याय 4 श्लोक 15। पूर्व काल के मनुष्यों ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं। पूर्व काल में जो बड़े महान लोग हुए हैं जैसे राजा जनक आदि, उन्होंने भी इस बात को जान लिया था कि कर्म करने का अधिकार है फल का नहीं, इसलिए तू भी ऐसा कर अर्जुन। अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान बताते हैं, हे मनुष्य तू ऐसे कर्म कर कि ताकि तू कर्म में लिप्त न हो, वो तेरे लिए बॉन्डेज या बंधन न बन जाए, मुक्त रह के कर्म कर। गीता अध्याय 4 श्लोक 16। किम कर्म किम कर्म इति कभी अप्रत्यय मोहिता प्रत्यय कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व में तुझे भलीभांति कहूंगा, जिसको जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्लोक 17। कर्मणो हापि बोध अव्ययम् बोध अव्ययम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्ययम् गहना कर्मणो गति। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, समझने में बड़ी कठिन है। भगवान बताते हैं मनुष्य को एक कर्म होता है, एक अकर्म होता है और एक विकर्म होता है, तीन प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म कौन होता है? कामना के कारण क्रिया ही फलजनक कर्म बन जाती है, और जब कामना भर जाती है तो विकर्म बन जाता है। विकर्म क्या होता है? पाप होता है। ये कर्म पाप रहित होता है, एक विकर्म क्या होता है? पाप से। वो कैसे? कर्म करना है धन कमाना है, लेकिन जब हम दूसरे के धन को चुराते हैं या किसी को पूरा धन नहीं देते जितना उसका बनता है, तो वो कर्म ही क्या बन जाता है? विकर्म। और विकर्म से क्या होता है? पाप होते हैं। कामना का सर्वथा नाश होने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। और अकर्म का बनता है कर्म जब हमारे मन में इच्छा नहीं है। चलो भाई गुरुद्वारे जाएं, मंदिर जाएं, किसी अन्य विद्यालय में जाएं, कहीं जाके कुछ दान दक्षिणा दे के आए तो है तो वो कर्म। लेकिन हमने कभी नहीं ये सोचा, ना हम सोचते हैं कि हमने जो पूजा की, भगवान को चढ़ाया, कुछ लोग तो खैर मांगते हैं, लेकिन अगर हम उसको ऐसे ही करें तो वो क्या बन जाएगा? वो कर्म अकर्म बन जाएगा, उसका कोई बंधन नहीं होगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। कर्म है, विकर्म है और अकर्म है, इसको आप बलिवान के समझ लीजिए। तो विकर्म मत कीजिए, कर्म कीजिए, और जब कामना का नाश हो जाएगा तो आपका कर्म क्या बन जाएगा? अकर्म बन जाएगा। श्लोक 18। कर्मण्या कर्मिया पश्येत कर्मणि च कर्मिया सबुद्धिमान मनुष्येषु सायुक्ता इत संकर्म कृत। जो मनुष्य कर्म या कर्म देखता है, जो अकर्म कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है, वह योगी है, वह संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, वह धन्य है। गीता श्लोक नंबर 19। आरम्भा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि गर्भ कर्मान तमाम पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित है, तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन बुद्धिमान कहते हैं। जो कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, वो निर्लिप्त रहते हुए सब काम करता है, वह संपूर्ण ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। ये बात समझने वाली है। जो कर्म योगी जो कर्म करता है, कर्म करते हुए ना संकल्प करता है ना कामना करता है, कर्म के लिए कर्म करता है, वो निर्लिप्त होकर सब कर्म करता है, वही ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी है। श्लोक 20। त्यक्ता कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो आश्रया कर्मण्यादि प्रभुत्वापि नैव किंचित करोति सः। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहे तो सदा तृप्त है, मैं कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। गीता श्लोक 21। मेरा श्रेया अतृप्त आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्म योगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। अतः केवल शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म किए जाए उनसे कोई पाप नहीं बनता और न ही पाप लगता है। श्लोक 22। यदिच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समासिद्धो वसिद्धो चो वित्तवापी न निबद्धते। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, और जो ईर्ष्या से रहित है, द्वंद्वों से रहित है, तथा सिद्धि और सिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। श्लोक 23। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञ या चर्ता कर्म सुमग्न प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 24 ब्रह्मात्म ब्रह्मविद् ब्रह्मानगनो ब्रह्माहुतम् ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात अर्पण किया जाए विश्व आदि पात्र भी ब्रह्म है, सभ्य पदार्थ जो घी आदि भी ब्रह्म है, और ब्रह्म कर्ता के द्वारा ब्रह्म अग्नि में आहुति देना क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म ही कर्म समाधि हो गई है उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। श्लोक 25 देव मेव परा यज्ञम योगी ना परिपासते ब्रह्माग्ना परे यज्ञम यज्ञे नैवो प्रभावते। अन्य लोग देव भगवत रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का हवन करते हैं। श्लोक 26 अग्नि जो होती शब्दादीन इंद्रिय अग्नि जो होती। अन्य योगी लोग श्रोतरादी समस्त इंद्रियों का समस्त अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। श्लोक 27 सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगानु जो होती ज्ञान दीपिते। अन्य लोग योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। श्लोक 28 जब वेदास तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा पड़े स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ संक्षित बता। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले रतनशील साधक द्रव में यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपो यज्ञ करते हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। यज्ञ के ये विभिन्न प्रकार गीता में श्रीमद् भगवान कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ कितने किस्म के होते हैं। निरोही बस्तियों को निष्काम भाव से दूसरों की सेवा लगाना भी जब यज्ञ है। सर्व धर्म पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नता से सह लेना तप यज्ञ है। कर्मों की सिद्धि असिद्धि में तथा अनुकूल या प्रतिकूल फल की प्राप्ति में सम रहना योग यज्ञ है। सत शास्त्रों का अध्ययन मनन नाम जप आदि करना स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। अपाने ज्योति प्राणम प्राणे अपान तथा पवे प्राणापान गति प्राणायाम प्राणायाम अप्रणीताहार प्राणान प्राणेषु जुहति सर्वे अप्रेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षत्रे कलमिषा। दूसरे कितने ही प्राणायाम के कारण प्राण हुए योगी लोग अपान में प्राण का प्राण और अपान की गति रोककर कुंभक करके फिर प्राण में अपना अपान का हवन रचक कहते हैं। पूरक कुंभक और रचक यहाँ बताए गए हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। श्लोक 31 यज्ञ शीतम रघुजो ज्ञानी एवं सनातनम नायम लोको अस्य कुंतो अन्य कुरुसता हे कुरुवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन यज्ञ से बच्चे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। गीता श्लोक 32 32 श्लोक एवं बहु विद्या लगा दिखता रमने मुखे कर्म जान विद्वीतान सर्व एवं ज्ञातवा विमोक्षे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्म जन्य जान इस प्रकार जान कर तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तीसरा अध्याय 32 अध्याय 4 श्लोक 32 होंगे। पढ़े अभी, अब कल से हम आगे स्वाध्याय करेंगे। अब मैं एक भाई के अनुभव बताने जा रही हूँ। डॉक्टर का नाम है श्री गौतम सूद और पत्नी का नाम है श्रीमती कमला सूद। हेडिंग उन्होंने दिया है दया निधान स्वामी जी। शारद वाणी पत्रिका के 50वें अंक छपने के शुभ अवसर पर मैं अपनी धर्म पत्नी सहित श्री मां जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। मेरा तथा मेरे परिवार का रिश्ता श्री मां देवी तीर्थ से बहुत पुराना है। श्री मां देवी तीर्थ संत श्री उदास जी का मुझे तथा मेरे परिवार को भरा पूरा प्यार व आशीर्वाद है। सन 1976 में मैं बीमार हुआ, पेट में अल्सर हुआ, अल्सर फट गया। मैं 3 दिन से बेहोश था। डॉक्टर ने इनकार कर दिया था कि मेरा बचना मुश्किल है। उसमें बाबा जी को घटना का पता चला तो उन्होंने कहा, ये घटना इस प्रकार घटी कि जब मुझे बंजार से कुल्लू लाया, मनाली लाया गया, तो मनाली वाले मिशन हॉस्पिटल में कहा कि कुल्लू ले जाओ। फिर मुझे कुल्लू गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाया गया, तो वहाँ पर वहाँ से जब कुछ लोगों ने पता चला कि लोग जी बीमार हैं, तो उनके ससुराल में भी ये पता चला, तो दूसरे दिन ससुराल से उनकी सासू तथा कुछ लोग श्री महाराज जी के साथ जा रहे थे हरिद्वार। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने पता भेजा और वो हमिता आई और कहने लगी, मासी जी, नानी जी ने कहा कि हम कल हरिद्वार नहीं जाएंगे। बोलो क्यों? क्योंकि प्यारी तो सारी है, यहाँ तक कि हमने कुछ पकवान भी बना लिए हैं, पर अभी अभी मास्टर मनाली से मास्टर जी को लाया गया है और अस्पताल में दाखिल किया, तो इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो फिर वो नहीं गए, लेकिन महाराज जी को तो जाना था। सब तीर्थयात्री तैयार थे, उन्होंने माता जी को कहा, उन्होंने था ये कहा कि तुम लोग को तुम तब आना, माता जी मम्मी जी आपने तब आना जब दौलत राम जी का ऑपरेशन हो जाएगा, तो बाबा तो कर चला जाएगा। फिर उन्होंने कहा आवेश में आकर उस आदमी को काम के सिवाय कुछ नहीं सुनता, काम ही काम करता रहता है, काम के लिए जान दे देनी है। फिर कहा भूसा कि उसे कुछ नहीं होगा, माँ आप जाओ। इसलिए माँ अस्पताल चली गई और बाबा जी हरिद्वार चले गए। फिर आगे दोस्तों हम ये लिखते हैं, मेरा ऑपरेशन चौथे दिन हुआ, बाबा जी तो हरिद्वार चले गए, मैं अस्पताल में था, तो मेरा ऑपरेशन चौथे दिन हुआ। क्योंकि कभी ब्लड प्रेशर की कमी, कभी खून का नहीं मिलना, ग्रुप का नहीं मिलना, और कभी हवा झंझावात से बिजली का चला जाना, बड़ा मुश्किल था ऑपरेशन करना। डॉक्टर बड़े हैरान थे, परेशान थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि लाला से जो कुछ लिखवाने लिखवा लो, वरना हम इनके ये नहीं देते हैं कि हाँ ये अवश्य ठीक होंगे, ऐसे भी लिखवाया जाता है। अच्छा, क्या हुआ कि सारा दिन ऑपरेशन होता रहा, चौथे दिन ऑपरेशन हुआ था और वो सफल भी हो गया। जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन श्री महाराज जी सारा दिन धर्मशाला के कमरे में रहे, भक्तों को कहा बाहर से ताला लगाकर चले जाओ। ये घटना शायद मैंने पहले भी कहीं आई है कि बाबा जी ने हरिद्वार में क्या किया कि श्याम जी कमरे में लेट गए, बैठ गए और भक्तों को कहा ताला लगा के चले जाओ। माता जी तो साथ थी नहीं, और भक्त ऋषिकेश चले गए। जब सायंकाल हरिद्वार आए तो बाबा जी अंदर ही थे, और ताला खोल कर देखा तो बाबा जी समाधि में थे। उनकी आज्ञा सर्वोपरि मानकर भक्तों ने ऐसा ही किया और स्वयं ऋषिकेश चले गए। मेरा विश्वास है कि श्री महाराज जी ने स्वयं आकर ही मेरा ऑपरेशन किया है। मैं अपने सूक्ष्म शरीर को वकारण शरीर को स्थूल शरीर से अलग कर लेते थे। उन्हें जो जहाँ पर कार्य करना होता था वे आज भी कर आते हैं। अभी 1995 में मेरी धर्म पत्नी सुंदर देवी जी की माता जी अखाड़ा विहार में बीमार चल रही थी। उनकी उम्र 92 वर्ष थी और डॉक्टर ने भी कहा था अब मुश्किल है, सेवा करो। 16 दिसंबर 1995 को बाबा उनके घर गए, माता जी को आशीर्वाद दिया। उनके परिवार ने उनके पुत्र रामदास जी से कह दिया, माता जी कांत समय आ गया है, दान करवा दो। ये कहकर बाबा जी चले गए तो फिर रामलाल जी को याद आया कि बाबा जी उनकी माता को लेने आए थे। बाबा जी पर कहा करते थे, माता जी पहले बाबा जाएगा फिर आपको लेने आएगा। बस फिर तो रामलाल जी को विश्वास हो गया कि बाबा जी ही तो आए हैं। और तीसरे दिन माता जी ने शरीर छोड़ दिया। इसके साथ ही एक और घटना मुझे याद आ गई। मेरे तीसरे बेटे को थोड़ा चक्कर जैसे आते थे, डॉक्टर की दवाई शुरू थी, बस 7वीं 8वीं 5वीं से मैं पढ़ता था, लेकिन दवाई से कुछ असर भी नहीं हो रहा था। तो एक दिन मेरी धर्मपत्नी बालक को लेके मंदिर गई और बाबा जी को बताया कि बाबा जी देखिए इसको चक्कर आते हैं, दवाई भी कोई नहीं लगती है। तो बाबा जी ने धोने से बस निकाली और माता जी को बेटे के माथे पर लगाई और दे दी। कहा माता जी ये विभूति प्रतिदिन बच्चे के माथे पर लगाना और घर में अखंड जोत जलाओ और एक किसी भगत को किसी महात्मा को डेली खाना खिलाओ। जब माता जी ने लगा कर वही किया, बच्चा मेरा बेटा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो गया। तो बाबा जी कर्मयोगी भी थे, जो सिद्ध थे, रिद्धि सिद्धि के दाता थे और वो जो चाहते कर सकते थे। इस महान बात उनकी थी कि वो एक सच्चे देशभक्त थे और रानी माते के बड़े शहीद थे, सब पर दया करते थे, सबसे प्यार करते थे। वो कहते थे चमत्कार को नमस्कार, वो चाहते तो बड़े बड़े नमस्कार चमत्कार करके बाबा शिरडी साईं की तरह अपना वो सब मंदिर बनवा करके यश कमाते। लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा को तो समाज को ऊपर की ओर ले जाना है, उसे चमत्कारों में नहीं फंसाना है। इसलिए उन्होंने मंदिर में अपना फोटो भी नहीं लगाया और देशभक्त होते हुए मंदिर की एक दीवार पर लिखवाया था, मंदिर की संपत्ति सारे देश की संपत्ति है, इसकी रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इस प्रकार एक ने अनेकों रूप मैंने बाबा जी के देखे हैं। आज भी जब मैं उनको याद करता हूँ तो मेरे शरीर में रोमांच हो आता है। ऐसे एक सच्चे देशभक्त प्रभु भक्त महान योगी को मेरा बार बार नमस्कार। उनके धर्म पत्नी कमला देवी जी लिखती हैं, कमला देवी जी लिखती हैं कि कमला देवी जी लिखती हैं कि 1970 की बात है, मैं अपने घर मनाली में सायंकाल भोजन पका रही थी। तो उसमें हमारा घर पुराना घर था जो हमें पैतृक संपत्ति में मिला था। तो दूसरी मंजिल पर छोटी सी रसोई थी और सीढ़ियां चढ़कर एक बरामदा आता था। बरामदे से भीतर की ओर एक दरवाजा था और वहां भीतर दो कमरे थे और ऊपर एक छत थी जिसको हमारी भाषा में ताला कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं सायंकाल 6 बजे तो वह तवा रखा हुआ था चूल्हे पर और हमारे यहाँ जो भटूरू बनते हैं भटूरू सेक रही थी। तो मुझे फोड़ने पर किसी आदमी के चलने की आवाज सुनाई था तब तब। मैंने कहा कोई आया? तो दरवाजा सामने था तो मैंने देखा से उठाकर तो मुझे महाराज जी दिखाई दिए। स्वामी जी मैं बड़ी खुश हुई। कि स्वामी जी आए, लेकिन स्वामी जी रसोई की ओर नहीं आकर के जो भीतर दरवाजा था भीतर जो जाता था वहाँ चले। और मैंने वो बटोरू तवे से उतारा रख दिया और चली गई कमरे में। वहाँ देखा तो वहाँ कोई नहीं है, ये क्या हुआ? फिर सोचा अच्छा ऊपर ताले में महाराज जी गए होंगे, क्योंकि उन दिनों मेरे पास मेरी छोटी बहन गीता आई थी, हम दिनों स्कूल में पढ़ाती थी और छुट्टियों में मेरे पास आ गई थी। उनका उस वक्त क्या चिंतन मन चलता था कि ये सायकाल एक दो घंटे उससे ताले में बैठ कर अपना ध्यान पूजन करती रहती थी। तो मैंने सोचा कि गीता बहन ताले में बैठी है तो बाबा भी बड़े जाने जाने हैं, वो ताले में चले गए होंगे सीधी उतर कर उनसे मिलने। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चली, ताले में देखा गीता बहन जी तो अपने मगन है भक्ति में गोवन ध्यान में, लेकिन बाबा जी है नहीं। और मुझे आज तक वो घटना एक सच्ची घटना, तो मैंने अपने आंखों से देखा बाबा जी को, याद है वो आज भी मैं याद करती हूँ। तो बाबा जी की छाया थी कि बाबा जी स्वयं थे कि क्या था, मेरी आंखों ने उनके दर्शन किए, इन चक्षु ने उनको देखा। और जब पता करो तो बाबा जी तो मंदिर में थे, मंदिर में है, लेकिन बाबा जी जब मर्जी जहाँ मर्जी जाते थे आते थे। लेकिन मुझे उस वक्त ये नहीं समझ आया था कि कुछ वर्षों पश्चात गीता बहन जी घर बार त्याग करके मंदिर में चली जाएगी। तो बाबा जी की क्या कहूँ, बाबा जी तो मैं मानती हूँ तो वो भगवान के अवतार थे, वो भगवान थे, लेकिन हम लोग कुल्लू की जनता उन्हें समझ नहीं पाई वो अलग दूसरी बात है। लेकिन फिर भी आज भक्तगण उनके कुछ जिन बातों को जानते हैं, जिनको विश्वास है आस्था है, जो उनके दर्शन भी अदा करा करते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दूतराम सूद गंगा सूद मनाली जय माता दी गीतमा।